मुनि जन जो है बाटे, सतगुर पुरुष कबीरी की कोई न चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैले। पग से ती दुनिया चला ये पंछी परो उड़ाने, ऊंचा महल कबीर का जाने जनी आसमान। गिव नीम मंडेरन मैल के नहीं घाट नहीं बाटे, ऊंचा तख्त कबीर का कैसे की जय साठ। स्वर्ग संख स्वर्ग पर सैल है संख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अतरद देखिया बिना नीम का गाम। बिना नीम के नगर में वो बसते पुरुष कबीर, शिव ब्रह्मा दिक थकत है कोई न जा कोई न कौन धरे जादीर। लख लख योजन उड़त है ये स्वर नर मुनि जन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। जावे सो पावे नहीं उल्ट पंत की चाल, दिल ही अंदर दर्श है योजन संख विशाल। धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, भूले चुके हंस को तू पकड़ियो मत कजाक। आदनी गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब मुझे मिले और मुझे साथ लेकर के सतलोक गए। रस्ते में धर्मराज का स्थान जहां पर न्याय वो सब का न्याय करता है, अकाउंट देखता है, लेखा जोखा करता है, वहां भी गए। ब्रह्मा विष्णु महेश का सारा व्यवस्था दिखाई, वहां उनके लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, नरक दिखाया, पूरी व्यवस्था सारे इस ब्रह्मंडों की मुझे दिखा करके सतलोक लेकर गए। रस्ते में जब धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज के पास जाते ही परमात्मा को देखते ही धर्मराज ने खड़ा होकर के प्रणाम दंडवत प्रणाम किया, अपना आसन त्याग दिया, जैसे उच्च अधिकारी और छोटे कर्मचारी पर जैसे अपनी आदेश देता है और कर्मचारी शिष्टाचार से प्रणाम करता रहता है और वो अपनी हुक्म सुना रहा होता है, ऐसे परमेश्वर वहां पहुंचे तो धर्मराज के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी काया कांपती है और वो परमेश्वर के सामने कांप रहा है। क्या आदेश देते हैं परमात्मा? धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब धर्मराज से कहा कि मेरा कोई हंस भूल भटक के तेरे दरबार में आ भी जावे तो तू उसका अकाउंट मत लेना, मेरे पास भेज देना, क्योंकि यहां परमात्मा का एक राजदूत भवन टाइप इस ब्रह्मांड में भी, प्रत्येक ब्रह्मांड में मालिक अन्य रूप से रहता है। तो क्या बता रहे हैं कि कोई हंस मेरा, मेरी भक्ति करने वाला किसी कारण से पथ से विचलित हो जावे, नाम छोड़ देता है और वो वहां चला जाता है, और उसको भी तो मत पकड़ना, मेरे पास भेज देना। तो क्या बताते हैं, धर्मराज ने कहा प्रभु आपका उपदेश लेने के उपरांत और उसके बाद तो आपके अकाउंट आपके हाथ में हो जाता है, उससे पहले का जो उसके संस्कार है बुरे हैं अच्छे हैं वो तो परमात्मा मेरे कागजों में होते हैं, उनकी उनको तो कर्म आधार पर मुझे सजा देनी ही पड़ती है। इसका कोई समाधान मेरे लिए करो प्रभु। तब परमेश्वर ने कहा कि जो भी तेरे कागजों में जो यहां ब्रह्मांड के संस्कार कर्म अच्छे बुरे हैं उनको बुरे कर्मों को मैं कैंसिल कर दूंगा। वो मेरी प्यारी आत्मा के जो मेरे पूर्ण संत की शरण में और विधिवत रह रहा है और किसी कारण से कोई भूल बन गई वो तेरे यहां आ जावा दरबार में तो उनका कुछ नहीं करना पड़े। और जो भी मेरा उपदेश प्राप्त है वो तेरे अकाउंट में जो भी उनके पिछले पूर्व संस्कार बुरे हैं उनको मैं समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं, मदहारी जारी न राजो बाग तुम को खाही, पदारा पर घर तक हैं जिनको लो अकनाही। धर्म राय विनती करे सुनियो पुरुष कभी हीरी, वो तो मुहे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरी। जो मदहारी जो शराब पीते हैं और परस्त्री गमन किया है जिन्होंने, भांग तमाखू आदि खाते हैं, शराब पीते हैं, मद पीते हैं, पर दारा पर दूसरी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, पर घर तकते हैं यानी चोरी चप्पा भी करते हैं, उनको लूं अकनाही, उनको पकड़ूं के नहीं प्रभु, उनका तो अकाउंट मेरे पास अब मेरे कागजों में तो वो सजा के अधिकारी है। परमात्मा कहते हैं कुश्ती हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा कर सुवास चरण चित दीजिए। गीता जी में वैसे लिखा है कि अति दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो उसको भी सत्संग में आ जाए तो उसका अनादर नहीं करे, मन में उससे नफरत नहीं करे। सत्संग में आएगा तो धीरे धीरे सत्संग सुनेगा, विकार त्याग देगा, भगवान बचेगा। अब पानी गंदा कपड़ा है और पानी के निकट आएगा ही नहीं, साबुन उसका लगने ही नहीं गए तो वो निर्मल कैसे होगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं पहले अनजान पने में कितनी ही किसी से गलती हो चुकी है, ये दयालु परमात्मा सब जानता है ये कैसे होता है। ये मन जो है ये काल का एजेंट है और ये सब बुराइयां करवा देता है, ऐसी अच्छी आत्मा सीमा से भी करवा देता है जो सोच भी नहीं सकता समाज के ये आदमी रहस्य कर्म कर देगा, तो वो आत्मा नहीं करती ये मन करवाता है। उसके लिए परमात्मा अपने बच्चों को प्यार देता है, अपने सत्संग रूपी अमृत वचन रूपी जल से, सत्संग में अमृत वचनों रूपी जल से उनको धोता है, साफ करता है। जैसे बच्चा छोटा सा पारने में झूल रहा है और फिर वो कुछ देर के बाद रोता है, मां जाती है देखती है बच्चे ने टट्टी भी कर रखी है, पेशाब भी कर रखा है, हाथ पैर भी सारे काब कर रखे हैं। मां को वो बेटा बुरा नहीं लगती, वह बेटी बुरी नहीं लगती जो छोटा सा बालक पालने में टट्टी पेशाब करके हाथ पैर दस्त सारे खराब कर रखे हैं। उसको वो बच्चा बुरा नहीं लगता मां को, उसको पता होता है इसने बेरा कोई ना बालक है, अनजान है यु इसके ये विवश है, तो उसको क्या करती है धोती है साफ करती है, रोता है तो साथ में लाड करती है, मत रो बेटी मत रो बेटा, और फिर साफ करके पानी दे और फिर सीने से लगाती है, प्यार करती है और फिर दूध पिलाती है। ऐसे हम अनजानपने में जो भी बुराई कर चुके हैं, हम कति खराब हुए पड़े हैं, इस सत्संग रूपी जल में आने से हम साफ हो जाएंगे। ये परमात्मा साफ करेगा, अपना दूध पिलाने योग करेगा और हमारे सब गंदों को साफ करके निर्मल कर लेगा। हम लाल आप लाल हो परमात्मा की, उसको उतने ही प्यारे लगते हो जैसे माता पिता को अपने बालक लग गया करें। हम कति अनजान हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी कर लेते हैं और बुरी नजर भी रख लेते हैं। इनके हमने बहुत भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं, उनसे हम परिचित नहीं, इस करके हम गलतियां करते रहते हैं और उन गलतियों की कितनी भयंकर पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, उसके विषय में एक झलक आपको सुनाते हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू आदि जो हम पान करते हैं वो बहुत बुरी है और उसे हमें बहुत पाप होता है। मांस खाते हैं, जो बुराइयां करते हैं उनको बहुत पाप लगता है। सोनारी जारी करे सुरा पान सो बारे, एक चलन हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। पुण्यात्मा अनजान पने में तम्बाकू हुक्का जो है एक इम्पोर्टेंट चीज बना ली, इम्पोर्टेंट आइटम बना लिया समाज ने कि अभी जिसके घर में हुक्का नहीं है वो घर की सा, ये आम कहावत हम सुना करते थे और उस आदमी को बहुत बुरा मना करते जो जाते ही हुक्का ना भर दे। तो मैं महान जाता था तो पूछा करते थे घरवाले, भाई वहां गया था रिश्तेदारी में, तेरी कैसी सेवा की? तो बताता था बस जाते हुक्का भरया और चलम सीढ़ी नहीं होन दी मेरी। वाह बीवा बड़े अच्छे सेवक हैं, वो तो रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, चलम ठंडी नहीं होने दी होकेगी, बहुत बढ़िया है। तो इसको बहुत अच्छा मान्या करते हैं। अरे वो तम्बाकू वो हुक्का कितना दुश्मन है इस जीव का। काल ने वो काम पहले शुरू किया जो कति विनाश करवा दे इस जीव का, भक्ति नहीं करा, इसमें इतने पाप कट्ठे हो जाए धोए तो बिना धोए, ऐसा कर्म कराता है। अब देखो गांव गांव में ये दास सत्संग करने जाता था, नाम लेने वाले से कहा जाता था कि बच्चों हुक्का भी नहीं बनना है, बहन बेटियों तुमने हुक्का भी नहीं बनना है, पीना तो दूर रहा, आग भी नहीं रखनी है बुड्ढे के हुक्के में किसी के में भी। तो गांव वाले लोग एतराज करने लगे, यो किसा गुरुजी बड़का नूटी शिक्षा देश है, हुक्के बनते भी नाटा बुढ़ेंगे। यानी जो भी बुराई घर कर चुकी है समाज में उसके विपरीत अगर जरा सा कोई बोलता है तो समर्थक ज्यादा होते हैं उस बुराई वाले के, और उसके विपरीत बोलने वाले का समर्थक कोई नहीं होता। तो इस प्रकार उनको दुख होता था कि यू की सा गुरु जी बड़का नोटी शिक्षा देश है वो केवल मंत्री नाट है। एक बात बताओ, तम्बाकू बहुत, अगर तुम हुक्के को तम्बाकू को अच्छा मानते हो तो अपने छोटे छोटे पोतों को बेटों को पिला के दिखाओ हुक्का, ले बेटा पी थोड़ा सा, जैसे दूध पिलाते हैं, दादाजी दूध पी रहा है, पोता या पोती आ जाती है तो अपने अपने मुंह मती निकाल कर दूध को छोड़ के नो कह दे बेटी आजा बेटा थोड़ा सा पी ले, देख तेरी चोटी बड्डी होगी, और यानी सौ प्रकार से उसको भला फुसला के और दूध पियाएगा, उसको थोड़ा बहुत जरूर पिलाएगा। और हुक्का आप तो कहेगा ले रहे पोता हुक्का ला भर के बेटे हुक्का भर, और वो पोता घूट लगा देने का मारूंगा तरह जो पिया है बहुत बुंडी चीज है मत ना पीना इसको आज के बाद पाप लग गएगा तने, कमाल की बात है। फिर सब डिया हुक्का है तो प्या ना अपने पोते नर बेटिया ने चोटी पकड़ पकड़ कर पिला इनको अगले बेटा पी थोड़ा सा बेटी आ जा एक हुक्का पी दे, ये महा बुराई है। पता भी है उनको कि बुराई है, फिर एक रिवाज बन गई। जैसे हिंदू पवित्र हिंदू समाज मांस खाने वालों को महापापी मानता था और मुसलमानों को इसलिए हे समझते थे घृणा करते थे कि वो मांस खाते हैं और बाकी बुराई तो सारे करें। मुसलमान शराब नहीं पीते थे, हिंदू शराब भी पीवे ओकार भी पीवे पर मांस नहीं खाते थे। पहले तो कुछ भी नहीं खाते पीते थे पर बाद में ये बुराइयां घर कर गई थी, लेकिन मांस अभी तक नहीं खाया करते थे और उनको इसलिए बुरा माना करते थे कि वो मांस खाते। वह आज हिंदू समाज भी पीछे नहीं रहा मांस खाने में, क्योंकि बुराई बहुत शीघ्र ग्रहण करती है और जल्दी फैल जाती है। तो क्या जिन कबीलों में मांस खाया जाता है और वहां कोई बटेऊ जाता है मेहमान जाता है उसके लिए स्पेशल बकरा काटा जाता है, अन्य कहेंगे कलेजा कलेजा लाइए बटेऊ के लिए मेहमान के लिए कलेजा निकाल के वो बनाना बढ़िया वाला। अब उस कबीले में उस परिवार में सभी मांस खाते हैं और नवजात शिशु बच्चे जब सियाने होते हैं बड़े होते हैं उनको पिता भी दादा भी दादी भी माता भी रिश्तेदार सब मांस खाते मिलते हैं, तो उस बच्चे को कोई बुरा नहीं लगता कि ये मांस खाना पाप है, उसको बुरा नहीं लगता। और हमारे लिए जो यहां जो मांस नहीं खाते थे और उनको कोई नो कह दे ना इसने मांस खा लिया उल्टी गिर जाती थी मांस का नाम लेने मात्र थे, तो वो इतना इसी प्रकार हुक्का जो है इतना भयंकर पाप है, लेकिन ये बचपन से ही हमने पीते हुए नजर आए और एक विशेष इम्पोर्टेंट आइटम बना रखा था मेहमानी के लिए तो किसी को बुरा नहीं लगता। ये कितना बुरा है अब देखना। सुरापान मदमासा हारी ही गवन करें भोग पर नारी सत्तर जन्म कटते हैं शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम पर द्वारा स्त्री का खोले सत्तर जन्म अंधा हो डोले मदरा पीवे कड़ुआ पानी सत्तर जन्म सवन की जानी। फिर क्या बताते हैं क्या बता रहे हैं परमात्मा क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि सौ नारी जारी करे सुरापान सौ बार सौ पर स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करता है जो पाप आत्मा और सौ बार दारू पी लेता है वो जो पाप है उन दोनों का मिला के उस एक चलम हुक्का भरने वाले को पाप है और दुष्कर्म करने वालों को कितना पाप है। पर द्वारा स्त्री का खोले सत्तर जन्म अंधा हो डोले जो किसी दूसरे बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करता है बलात्कार करता है कहते वो सत्तर जन्म तो अंधा बनेगा कंटिन्यूस और फिर मदरा पीवे और फिर सौ से कर दे तो कितना पाप 7000 जन्म तक अंधा रहेगा। फिर कहते मदरा पी वे कड़ुआ पानी ही सत्तर जन्म समान की जानी जो शराब पीते हैं सत्तर जन्म लगातार कुत्ते के बनेंगे और दो सौ बार पी चुके हैं तो 7000 जन्म कुत्ते के लगातार उसको होंगे। इन दोनों का दोष मिलाकर के क्या कहते हैं सुरापान मदमासाहारी और मांस खावे जो दूसरे का मांस खावे महापाप होता है, तो इन तीनों का दोष मिला करके एक बार हुक्का भरने का सहयोग देने वाले को इतना पाप हो जाता है। सुरापान मदमासा हारी गवन करे भोग पर नारी सत्तर जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। सो नारी जारी करे और सुरापान सो बार एक चलम हुका भरे वो डूब काली दारे। इतना पाप है इस हुक्के की तम्बाकू में। हमारा जो शरीर है ये परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। परमात्मा के दरबार में जाने का एक सुषुम्ना द्वार है, एक ये इला और ये पिंगला। इड़ा तो दाई को कहते हैं, पिंगला बाई को कहते हैं, दाई को कहते हैं, ईड़ा बाई को कहते हैं और पिंगला दाई को कहते हैं। ये दोनों नाकों से जो श्वास जाता है अंदर जाकर के एक सूक्ष्म द्वार है, जैसे छोटी सुई होती है कपड़े सीने की, उसमें धागा डालने का जो छिद्र होता है ये कितना सुराख है, और वो वैसे बंद होता है, वैसे जो सिमरण से उसको खुल कर अंदर चलता है। उस द्वार के ऊपर धुमे का मल जम जाता है, वो कति क्लोज हो जाता है, और वो द्वार ही बंद हो गया तो ये मनुष्य जीवन कति व्यर्थ है उस जीव का। उसको इतना तो उस हुक्के के तम्बाकू के से इतना पाप लगा, इतना महादोष हुआ कि ये परमात्मा मिलने का द्वार ही उसने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो इतना पाप होता है इसे। दूसरा, फिर हमारे शरीर में कमल बने हैं, उन कमलों में ये धुमे की गंध जाती है, खून में प्रवेश करती है, ऑक्सीजन के साथ जाती है, खून को गंदा करती है, और ये खून उन कमलों में से घूम कर आता है जहां भगवान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में महादेव और पार्वती जी, कंठ कमल में देवी। इनके अंदर से ये धुमे का गंध युक्त खून घूमता है और उन भगवानों का भी गंध महक आती है, उनको भी बदबू आती है, वो भी परेशान होते। गीता जी के 16 और 17 अध्याय में लिखा है कि ऐसे कुकर्मी प्राणियों को महाघोर नरक में ठोकूंगा, उनको बहुत पीड़ा दूंगा जो इन कमलों के अंदर मुझे और उस पूर्ण परमात्मा को वो ऐसे अमल करने वाले लोग परेशान करते हैं, क्रश करते हैं, उनको महा नरक में डालूंगा। तो क्या बताते हैं, तमाखू कसीदम तमामस्त हैप लोजित नसीरी कु एती न कैफ, मरहूद मकरूद पीवे शराब होगा सरे बित खाना खराब। सरे माने भगवान के दरबार में, सच्चे दरबार में वहां तुम्हारा खाना खराब होगा। मरहूद मकरूद पीवे शराब होगा सरे में खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश, तलक सा तमाखू सिला घोट पीश दई नाक नास कमल में कसी सी है। चाहे तो तुम नाक से सूंघते हो, हुक्का पीते हो, बीड़ी के माध्यम से पीते हो, शराब किसी प्रकार भी शराब आदि भी पीते हो, कहते हैं ये सारे शराब की भी गंध कमलों में जाती है, खून के अंदर से जाती है, कमल में कसीस, कमल में रहने वाले उन भगवानों के लिए दुखदाई होती है, कसक बनती है। करी चूर चकना धरा नाक नास सत्तर घलाही गति काट मास, बिस्त के दरीबे जकीना दुलद अगर मूल मौला जा बस्त पह प्रसिद्ध, हिंदू तुर्क जो दीनी तलाक पीवे तमाखू सरे के कजाक, खू नाम खू का तमा नाम गाये सौ बार सौगंध सौगंध सौ बार किसको न खाए। ओए होए, कहते हैं हिंदू समाज को समझाने की चेष्टा करते हैं कि देखो तुम गौ को कितना आदर से मानते हो, माँ के तुल मानते हो। कहते हैं खून नाम खून का और तमा माने गाय, ये फारसी के शब्द हैं। तमाखू, तमाखू कैसे बना? तमाखू की उत्पत्ति के लिए एक पौराणिक कथाएं हैं और परमात्मा ये समझाना चाहते हो तुम पुराणों को सही भी मानते हो, उसी दृष्टिकोण से सोच लो कि ये गाय के खून से बना है तमाखू। कैसे बना है? एक राजा का साधु ऋषि था। एक दिन राजा ने अपने साधु को, अपने ऋषि को, ऋषि साधु को बुला लिया अपने घर पे। अब जब ऋषि जी वहां पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, तो राजा साधु ने बड़े नाना प्रकार के भोजन व्यंजन इतने सुंदर बना दिए, क्या ठाठ बाठ कर दिए। अब जब कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है तो उसको आमंत्रित साथी करता है कि आप भी कभी दर्शन दीजिएगा। अब ऋषि ने अपनी पत्नी के कहने से बार बार कहा उसकी पत्नी ने कि आप भी कह दो, आप हमारे घर आइयो। ऋषि ने कहा कि आपने घर राजा आ भी गया तो बैठाएंगे कहां, एक झोपड़ी में रहते हैं। और ये ले आओ मन सैकड़ों सैनिक भी साथ में, अपने टूक भी को नहीं खान के। मैं तुझे पहला ही मना करूं था कि यह ना आते तो बढ़िया था, नहीं आना चाहिए था, मैं ना ठहरा था तुझे। अब ये और कह दिया ये कल न आ गया तो कैसे खाना खिलाएंगे। तो ऋषि की पत्नी कहने लगी आप नो ना करो, आप आमंत्रित कहना तो पड़ेगा ही। ऋषि जी ने भी कहा कि राजा आप भी किसी दिन दर्शन दीजिएगा। राजा ने दिन धर दिया कि मैं एक महीने के बाद उस दिन आऊंगा। अब ऋषि जी आ गए, वो दिन निकट आया तो ऋषि जी ने क्या किया कि स्वर्ग से एक गाय मंगा ली, काम धेनु गाय, और एक टेंट लगा दिया वहां पर एक साइड में, और वहां एक ऋषि से प्रार्थना कर दी कि आप इसके अंदर बैठ जाइए और गाय से माता से प्रार्थना कीजिए, और जो वस्तु बाहर व्यक्ति मांगे तो बाहर पकड़ाता रहना, ये यहां अपने आप सारी व्यवस्था हो जाएगी। राजा हजारों की संख्या में सैनिक ले गया, अपने साधु पर अपना दबदबा जमान खातिर देखेंगे ये कहां से व्यवस्था कर देगा, मेरी चौधर बन जाएगी, नीचा दिखाने के दृष्टिकोण थे। तो वहां जब पहुंचे सैनिकों के लिए अलग से टेंट की व्यवस्था होगी, विश्राम किया। कुछ देर के बाद खाने के लिए प्रार्थना की क्या हो राजन खाना खाओ। अब वहां बैठ के लाइन लगा करके राजा के लिए अलग से व्यवस्था बना दी, जो ऐसा भी घर पे व्यवस्था थी, कोई ऊंचे से मिट्टी का पहले ही बना रखी थी स्टेज सी, वहां बिछा दी कोई चादर कंबल सा, वहां बैठ गया राजा। उधर से ऋषि लोग आए हुए थे 20-30, उन्होंने आकर के वहां जाए उस टेंट के पास और थाली चार पावा पूरे पकवानों की और ले लेकर सबके सामने परोस दी। सब खाना खा रहे हैं, राजा ही सोच रहा है ऋषि एक गरीब सा आदमी ऐसा खाना कहां से ला रहा है। जब खाना खा लिया तो राजा ने पूछा ऋषि जी ये इतना सुंदर भोजन तू लाया कहां से, कोई कहीं बनाता भी नजर नहीं आ रहे हो। तब ऋषि जी ने बताया कि हमारा धन भगवान के पास डिपॉजिट होता है और प्रभु से मैंने अर्ज की थी, वहां स्वर्ग के राजा से मैंने अर्ज की थी कि मेरी जो भक्ति कमाई में से और ये गाय कामधेनु को भेज दो। तो राजन मैंने एक दिन के लिए उधारी मांग रखी है, तो दिखाना चाहा कि राजा को दिखाते हैं अपना साधु है ना कि दिखा देखो ये कामधेनु है, और इसे जो भी मांगते हैं वही प्रदान कर देती है। उसी से मैं कहा कि राजा उस ऋषि ने करके दिखाई एक रिहर्सल कि हे माता एक थाल और दीजिए। उसी से मैं कहते हैं थाल ने उठ कर आया ऋषि के हाथ में। अब राजा ने सोची भाई तू आया था इसने नीचा दिखानी है तो बात नहीं बिगड़गी। और फिर मन में खोट आ गया कि ये काम देनू राजा के पास होनी चाहिए, भिखारी के करेगा इसका, अच्छे बढ़िया भोजन खाया करेंगे फौज। तो ऋषि से कहा कि ऋषि जी ये गाय मुझे दे दे तू आप क्या करोगे इसका। ऋषि जी ने कहा कि देखो राजन ये मैंने उधारी मांग रखी है ऊपर स्वर्ग के लोग थे, ये मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ना के सैनिकों से कहा कि इस गाय को खोलो और चलो चलते हैं। तब ऋषि ने देखा कि तो बात बिगड़गी। जब तभी तो कहते हैं ना साडू की के रिश्तेदारी। तो कहा ऋषि ने कहा कि हे माता मैं विवश हूं, आपका अनादर करा दिया मैंने, आप सब लोग चली जाओ। उस टेंट के अंदर से गाय निकलकर ऊपर को चल पड़ी। राजा ने उस गाय को रोकने के लिए तीर मारा पैर में कि कंडम होकर गिर जाएगी, चलो लंगड़ी लुली पड़ी रहेगी, माल तक खूब खवाया करेगी। लेकिन वो चली गई, उसका खून बहुत बह गया, जहां जहां भी कहते हैं वो खून गिरा गाय का, उससे तमाखू उत्पन्न हुआ। तमाखू के पत्तों पर देखना गाय के रोम रोंग होते हैं, गाय के बाल ऐसे उसके ऊपर के वो बाल आते हैं। तो यहाँ परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं खून नाम खू का तमा नाम गाय सौगंध सौ बार इसको न खाए। ये तमाकू जो पी लिया खा लिया तुमने, गाय का खून खा लिया पी लिया भाई, ऐसे उनको बताने के लिए कि तुम गाय को इतना प्रिय मानते हो तो इसको छूना भी नहीं है। खू नाम खून का तमाखू, तमाखू गाय का खून ये नाम है इसका। तमा नाम खून नाम खून का तमा नाम गाय सौगंध सौ बार इसको न खाए। सौ बार सौगंध है इस तमाकू को पियो न खाओ। गधे स्वान कौवा कर्म के कुलीन पीवे तमाकू जो जम के अधीन। चिदानंद चित्त में तिसम दर हजूर अधम पापी पाप अधम पाप पापी भय स्वाना स्वान और सूर अधम पापी भय स्वानम सूर। नजला फिरे नैन बिंद को विध्वंस नस नाद नाड़ी जय दमहीन सवास पित बाई खांसी निवासी निवास कफ दल करे जालिया गिरास। कहते तम्बाकू पीने से कितनी और भी हानियां होती हैं, नाड़ियों में नजला हो जाता है, नाड़ियां बंद हो जाती हैं, खून खराब हो जाता है, दमा हो जाता है, काय बाई बन जाती है, पित्त बन जाती है, खांसी बन जाती है। काला तम्बाकू गोरा पीवाक दस बीस लंगर बैठे गुडाक। स्टाइल बताऊं हुक्का पीनिया की गरीबदास साहेब कहते हैं पान से यार बैठेंगे पान दस बैठ जाएंगे एक हुक्के का शुक्र दे। एक तो नजदीक सी बैठेगा एक दूर सी बैठेगा, नुका करिए का नहीं उड़े ना उड़त नौकर। तो क्या बताते हैं बाजे काला तमाखू गोरा पीवाक दस बीस लंगर जो बैठे गुटाक। बाजे ने और गुड़ गुड़ अरहु के हजूम कोरे को भद्दी बीसा है सोम। बैठ के बतलाओगे भाई उनका आज न्यू हो गया होका पीवेंगे जो ओ हो उनका भाई नाश हो लिया उनका तो उनका ऐसी है उसकी लड़का ऐसा है उसका फलाना न्यू है उनका था यानी करा किकी के बतलाया करे। बंकी पगड़ी और बंकी ने डिबी डबोए पर डूबे हैं के गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर एक बैठे अड़के एक बैठेंगे थोड़ी सी दूर। ये पीने वालों का स्टाइल बताओ हुक्का पीने का क्यों कर बैठा कर गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही यही मूल मंत्र तमाखू न बोई। यही एक इस बीमारी से पीछा छुटवाने का एक मूल मंत्र है कि तमाखू न बोइयो मतना। एक गांव में आदरणीय गरीबदास साहिब जी जा रहे थे अपने घोड़े पर बैठ के, और वहां एक तमाखू वो रखा था किसी जमीन में। वो तमाखू तो काट लिया था, उसके बाद उसमें कोई दूसरी फसल बीज रखी थी, और उस जो पहले तमाखू बीज रखा था, दूसरी बीज फसल बीज रखी थी, वह फसल अच्छी हो रही थी, दो दो एक डेढ़ डेढ़ फुट की। तो उसके बीचों बीच एक कच्चा रास्ता था, उसी कच्चे रास्ते से घोड़े पर परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी जा रहे थे। जो ही वो उनका घोड़ा और उस तमाखू पहले तमाखू बीजे हुए उस खेत के डोल पर पहुंचा, वहां से एकदम 20 कदम तो बैक भाग्या और फिर रास्ता छोड़कर दूसरी फसलों को तोड़ता हुआ और न चल पड़ा। अब वहां रखवाले थे खेतों में, फसलों के रखवाले थे, उन्होंने सोचा ये घोड़े वाले में तो गढ़िया मरोड़ हो रही है, यो तो भाई सीधा नहीं चलता, हमारी फसल तोड़वा दी। तो सभी वह किसान लठ ले लेकर घोड़ा घेर दिया, आगे थे गरीबदास साहिब जी को घेर दिया और नो लठ ठा दिए। अब गरीबदास जी ने घोड़ा रोक दिया और उनको 20-30 ने चारों तरफ से घेर दिया और नो कर दी। नो बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम घोड़ा के ले रहा है बस, हमने सीधा भी नहीं चलता ऐसे ऐसे करके, और नू लठ मारन के लिए कति 5 फुट की दूरी पर रह गए लाल आंख कर रहे। परमात्मा ने एक वेन्यू कर दिया, वो सारे के सारे न्यू पड़े जा गदा का उठा, और ऐसी स्थिति होगी जैसे गोड्डे टूट गए हो और पड़े पड़े देखो न उठा ना जा, तो वो जान गए कि यू आम आदमी तो कोई ना भाई, ये तो कोई देवता है, कोई कुछ अंदर अंदर जब आदमी हार जाता है ना, फिर सोचा उसके बारे में के सांग्स है। तो परमात्मा ने कहा भाई क्यों मुझे क्यों मारो थे भाई, के दोष है मेरा, नो तो बता दो। वो कहने लगे जी हमने बोलने जोगे तो कर दो एक बार कि मैं सांस आ जा डलते हैं फिर बताओ। तो परमात्मा ने कहा तो वह हौसला सा हो गया, लाठी घेर कर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, लाठी डाल दी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब क्या कहते हैं जी हम गरीब आदमी हैं और आपके घोड़े ने ये फसल तोड़ दी, हमने दुख आया इसलिए आपको कूटने के लिए आगे। गरीबदास साहब जी बोले भाई राह चलते व्यक्ति के साथ पहली बार तो इतना बदसूर करना नहीं चाहिए, पर मुझे केस सौंपता तुम्हारे ये फसल तोड़ने का, कम से कम मेरे से ये तो पूछते भाई नो कैसे तेरा घोड़ा इधर क्यों जा रहा है, घोड़ा था डर गया किसी वस्तु से और मेरी व्यवस्था थी, मैं मजबूर था तो मेरे से पूछना चाहिए था तुमने। फिर तो खड़े खड़े नतमस्तक हो रहे हैं। कब गरीबदास जी बोले मुझे ये तो पूछना चाहिए था ये घोड़ा क्यों डर गया, ये ऐसा क्यों भाग गया इधर को। तो उन्होंने पूछा जी के कारण था अब बता दो कि तुमने इस जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था। वो कहने लगे जी तमाखू बो रखा था। तो गरीबदास जी कहने लगे मेरा घोड़ा जो है इसलिए इसे डर के फड़क गया कि इसमें इतना गंदी चीज बो रखी थी तुमने, इतनी भूंडी बदबू अभी तक भी इस पशु को इसकी जो है ना श्वास को तंग कर रही थी, और तुम इन क्या ना पियो, तमाखू पीते हो आज के बाद तमाखू नहीं पियोगे, और नहीं तो तुम्हारे जो है फसल सारी नष्ट हो जाएगी। अब गरीब आदमी थे डर गए सारे, अगर जब इतना शक्ति वाला व्यक्ति है तो इन जबान कह दी तो बात बिगड़ेगी। देखो जब मेरा घोड़ा भी पशु भी इतनी नफरत करता है तुम इसको पीते हो, आज के बाद ये गांव में पूरे गांव में कोई तमाखू प्रयोग नहीं करेगा। अब देखो उनकी भले में कहा परमात्मा ने बुराई छूट जाएगी इनकी इस बार ने, तो वो कहने लगे कि भगवान ये तो ऐसा है वैसा है और गांव का काम है और उसके बिना तो सरह नहीं, रिश्तेदारी भी आते हैं, परमात्मा बिना नहीं कोई रिश्तेदारी नहीं, इसमें मौका नहीं पियोगे तुम तो आज के बाद। तुम्हें बस इतनी ही ये वरदान देता हूं, तब तो बोले जी अच्छा जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। अपना पता बता दिया कि मैं उस गांव से आया हूं, ये मेरा नाम है। गरीबदास चले गए। अब उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा भाई कोई बात नहीं, ओके बिना केसरा भर लो हुक्का चलो। उनके जाते ही जाकर देखा तो उनके जो हुक्टी वहां रखी थी ना खेतों में ओके, वो सारे टूटे पड़े। उसने देखा हमारा हुक्का टूट गया, दूसरा का हमारा भी टूटा पड़ा है, तीसरा का हमारा भी टूट गया, कति चूरा हुआ पड़ा। गांव में आए थे सारे गांव के हुक्के टूट गए, कति सारे टूटे पड़े। तो कहने लगे भाई यू केस अड़ा हो गया, होके सारे टूट गए। तब गांव वालों खेतों वालों ना के बताई भाई आड़त ऐसे ऐसे बात हुई थी, एक बड़े महान आत्मा थे और वो आदेश देकर गए हैं कि आपके गांव में हुक्का मत पियो नहीं तो हानि उठा लोगे। गांव वाला ने गांव में पहले बाबा बुब्बा रहा करते, उनसे पूछा बोला लाओ हुक्का, कोई जादू तंत्र नहीं होगा, मैं कर दूंगा ठीक। अब ले आए हुक्का, हुक्के ले आए थे किसी की भैंस मरगी, किसी का बालक, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, हाहाकार मच गई। तब सारे काम कान पकड़ दिया, आज के बाद हम हुक्का ना पीवांगे ना पियावांगे। आज भी इस गांव के अंदर तमाकू प्रयोग नहीं होता, हुक्का नहीं पीते वो लोग, ना किसी रिश्तेदार को पिलाते। अब तो बताते हैं वहां को थोड़ा बहुत चौपाड़ में दूसरे गांव वाले तो रखवाले हैं, रिश्तेदार आवत उसने लाठी में टांग का पकड़ान लाग गए, इतनी गिरावट आ गई है। पहले उस गांव में हुक्का नहीं पीते थे। आजा जील बंदा ईराना समोल, सरे का वचन जिन किया अदोल, तमाखू तलबदार जम का जमान, हुक्का हुकम नेस पीवे हैवान, दम दूत द्वारम खुलक खाल धूम, कमल कंठ में लचिसम अंदरूम, सुरापान बंग मट्टी मांस जो खाही, ककड़ चढ़ से पिए जम लोक जाही, गुदा मूल मुख द्वार गंदा शरीर, पड़े मार मिटे जड़े जम जंजीर, पड़े मार मोटी जड़े जम जंजीर, कैफी कमल जो कूंज खेचा कमन, इला पिंग लादर रुके ब्रह्मरंदर। इससे ये जो ब्रह्मरंदर रुकावट हो जाती है जो सुषुम्ना द्वार के अंदर प्रवेश कर जाता धुमा और ब्रह्मरंदर तक को बंद कर देता है। ऐसे दरीबे अमल की जचा, गए गोर गारत पाई न था, चिमटे चलम ले जैखे चहनाक, सोटे की मसलाई दई बीच आंख, तो लंगड़ है लंगड़ा और झूठा लबाड़, अमली के मुख में मूत्र की धार, कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे वो कड़वा ही पेश। ओए है। अब क्या कहते हैं यम के दूत वहां पर हुक्का पीने वाले को क्या सजा देते हैं, उसके मुख में मूतते हैं ऊपर जाकर उसने मुंह खुलवा के उसका। यहाँ कहते हैं ना हुक्का पीने का भाई तेरा कड़वा तमाखू को ना, दूसरा कह गाले मैं जा रहा हूं कोती कड़वा, कड़वा भरिए तो कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करे था हमेश, कड़वा ले प्यारे वो कड़वा ही पेश, अमली के मुख में मूत्र की धार। आए है उसे हुक्का पीने कड़वे हुक्का पीने वाले के परमात्मा कहते हैं यम के दूतों के मुख में पेशाब करेंगे, न्यू के लिए कड़वा ले पी भाई तू। बाड़ू की रेत की ज होते पलाव, खाते ज अमली जम दे गिलाव, रुधिर की नदियां हैं काली कुलीन, डूबे हैं अमली जो दरिया मदमीन, जाते रसातल कुसातल के माही, असंख जग जन्म नहीं छूटत नाही, तमाखु तर्क गर्क कर क्रोध ममता मनी मार सुर सुन सार बोध काम्यो क्रोधी तुम लोग भी लबूट बचन मान मेरा जम जधुमान घोट मूर्ख भयानक अचानक अचूक दर हैं सूत्र देखाते हैं रूख पामर परम धाम जाते न कोई झूठ झूठे अमल पर दे जान खोई। कई कहते हैं ना भाई हुक्का पीने तो क्या फर्क पड़े है भगवान के भजन में बीड़ी पीने में कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ ऐसे पंथ हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु और ये कबीर पंथी और ये बालोगेश्वर वाले जी बालोगेश्वर जी वाले सतपाल वाले ये सारे ओका पीने में कोई बुरा नहीं मानते को बीड़ी बैड़ी का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहन नाम दीवान जाई अपनी बाण में और वो पहले किसी और से नाम ले रखा था ब्रान माटी हो रही थी वह बहन जाई उसने समझा समझू कह कि आप हमारे गुरु जी से नाम ले लो। फिर मैंने उससे कहा माँ भी कहां से नाम ले रखा था तेने उसने बता दिया ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु थे। वो बोला तो बीड़ी पीती है बेरा जी पहले ना पिया करती नाम ले पाछे पीण जाकी है तेरा गजब हो वहां नाम लेने से के बाद पीन लागी मैं पहले ना पिया करती तेरा बोला ओ नकमी नाम लिए पीछे तो छोड़ते हैं बुराई को तूने के बाद में पीन लगी ने बोले जी वहां तो सारी पियो है बहन बेटियां सारे भाई भी और मैं ना पिया करती। दूसरी ने बोली लो पी लेना प्रसाद सहित है तेरा गजब हो इन कुकुर समझावे अनजानों को। तो कहते हैं झूठे अमल पे दी जान खोई ये झूठे अमल पे बीड़ी ना झूठी भक्ति बनी नहीं नाम जुड़ा नहीं गधा बन गया और वह छुट्टी को तेरे पे बुराई छोड़ देनी चाहिए। एक बार हम गुराना पाठ करने लग रहे गुराना के खेतों में हमारे सेवक है वहां पर गुराना उसमें हिसार में पड़ता है आज सीता सील में तो वहां खेतों में हम पाठ कर रहे थे शाम ने सत्संग करा करते दिन में वैसे ही बैठे थे 10-11 बजे गर्म सर्दियों के दिन थे धूप सीमन के बड़ा आंगन सा था एन रोड के ऊपर अकेले से मकान है वहां पर तो एक रास्ता चलता आ गया मोटरसाइकिल ले रहा मोटरसाइकिल रोक रही पूछा भाई वहां बाहर 2-4 बैठे थे भक्त के हो रहा है भाई सत्संग आ कर गुरु जी आ रहे हैं और पाठ चल रहा है वो भी आ गया अंदर बैठ गया उसने बातचीत करी ने बोला जी मैं भी नाम ले रखा मैंने कहां से बोला गुआनत है। मैं कहा अच्छा भाई किस तरह बोला बर्थू साथ है वो बोला मन मुझे पता था मैं वो तो हुक्का भी पी हुए हुक्का पीते हैं वो तो बोला आप हुक्के की बात करो हम शराब भी पी हुए वहां तेरा बढ़िया काम फिर वहां भाई तुम कमाल के आदमी और कर गया हम आपसे नाम ले तो ये सब छोड़ने पड़ेंगे वहां भी बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। बोला हम तो 7 दिन भी ना ले मगर ना ले फिर मैंने कब तेरे से कहा है हमारा नाम लोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा। बोला क्या फर्क पड़ता है इस शराब से बोला भी भगवान का जो आदेश नहीं है इससे हानि बहुत होती है तो ये परमात्मा नाराज हो जाता है। बोला जब गुड़ की बात तो भगवान रूसागर 360 पर रूसो रहता गजब गुड़ की भाप से जब भगवान रूसता है तो रूठन दे और उठ कर चल फिरा बोला शराब छोड़ने की चीज है तो गुड़ की भाप मतलब गुड़ से जो डिस्टिल करके वो बनाई जाती है शराब बोला उसमें क्या दोष है वो तो एक पवित्र हो जाती है। अब बताओ इन मूर्खा ने क्यों कर समझावे हे भगवान यानी जिसने बुराई नहीं त्यागनी उसके कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है बकवाद करने का अपनी उसकी वकालत करने का लेकिन ये यहीं चलेगी वहां नहीं चल सकती। अब कोई भगवान देश का संविधान है उसकी कोई धारा का उल्लंघन करता है तो वो कर रहा है जब तभी तब वो प्रसन्न है लेकिन जिस दिन वो इस कानून के सिकंजे में कसा जाएगा ना जब पता लगेगा फिर तो रोएगा मैंने गलती कर दी। तो क्या बताते हैं परम धाम पामर परम धाम जाते ना कोई झूठे अमल पर दी जन खोई। ये भक्ति भी करते हैं और दूसरी बुराइयां भी साथ करते हैं, ये कभी भी इष्ट धाम को भी नहीं जा सकते जिस भगवान की पूजा करते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 और 17 में यही प्रमाण दिया है। कर्य प्राणी अंध अंधेरी अंदर अंधेरी न किस्म चिराग पीवत तमाकू उनके बूटे बाग। करे प्राणी प्रीतम प्रीत साहिब निरालम अकल पद अतीत सकल सिद्ध चरणों सब वर्णों बियान बसो सुख सागर धरो निज ध्यान। आलिम वाली संभालो सिताब बिना नाम अमली झूठी किताब। अमली अमल के अमली अमल मक के बीच लेट सूर गौ छाड़ो करो शीश बैट। दुनिया दीवानी ही वानी हर रोज अमल आद छाड़ा सुरापान गोज। अल्ह सीन साबित दिल दीन सवाफ मुर्गी न मारो सुनो शब्द साख। कि कहते हैं ये शराबादी मत पियो, मांस मत खाओ और इन बुराइयों को छोड़ने के लिए संतों की वाणी सुनो, उनकी साखी सुनो। मक्का मने में मदीना मसीत कुफर दूर कर सो छोड़ो अनीत। गऊ का गला काट खाते जो गूद दो दिन ममड़ी पियो क्यों न दूधे। कहते हैं गां का तुम मांस खाकर खाते हो, ये तो दोनों धर्मों की माता है, दोनों को दूध देती है, ना हिंदू को मना करती ना मुसलमान को, तो तुम क्यों ना इसका दूध पियो, मांस खा के इसको खत्म कर देते हो। 8-9 साल तुम्हें दूध पियावे और फिर इसके बच्चे इसकी बच्चियां फिर आगे गऊ बने कोई बैल बने और इसका मांस मत खाओ भाई, सदुपयोग करो इस पवित्र प्राणी का। गऊ का गला काट खाते जमास काजी निवाजी चले हैं निराशे। मुल्ला मुर्ग मार देते जुबंग उलट खाल काढ़ी सो बकरी बिनंग। क्योंकि ऐसा जुलम कर तुम बकरी की खाल तार के और मार देते हो, काटते हो, खाते हो और फिर भगवान से तुम आंख भी मिलाते हो, उसकी अर्ज भी करते हो, महापाप है। लोटे पंच भक्त तजा है जो नाज कादर कली जोरत की ना जप। मुर्गी अंड फोड़ करते नवाज है और लोटे पंच भक्तम तजा है जो नाज। कहते हूं तो नाज भी नहीं खाऊ एक महीने तक, सुबह तो ले गए शाम तक कभी भूखे रहेंगे और शाम ने मुर्गी मार के खा ली और फिर नमाज भी करते हो। तुम नमाज करने जीवी क्यों कर दिया है, जीवन सागर का मांस खाकर तुम्हें भगवान का नाम लेने का भी दिल कैसे करता है। तुम तो रीस कर रहे हो, भगवान भक्ति नहीं कर रहे, एक नाटक कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं, मंसूर महबूब जाना खुदा सुली चढ़े सिज दीना कटाए। चिड़िया बुटेरी जो मारी गिलोल त्रिशरण जीव का नहीं तोल मोल। सुरे का सराप चढ़े सिस आए सुनो यार काजी हिति क्यों जग गाए। मंसूर महबूब जाना खुदाई सुली चढ़े सिस दीना कटाई। मंसूर चाला धनी के मिलाप कटा शीश जा का सुनो आदि साक। दोनों दस्त कट सूढ़ी चढ़ाए ऐसा सरे का धनी का जुराए। जिगर स्वाप सीनम जो पांचो हलाल मंसूर महबूब खेची न खाल। ऐसे बंदे को जो कयामत धरी काटे गऊ शीश जा से डरी। तस्बी गले बीच गल काट खाई काजी मुला कैसे जाना इलाही। अलह के सुलह में चले ना कोई सुनो या काजी भया नास्तोई। अजाजिल बंदा ईराना गया धनी का सुखन सवाल मिठा कहा बयानूर बंदा निरालम जात मेहर और फजल सब रहा ने हाथ शैतान कल में अजाजिल कीन फजल मेहर तूफान आई अधीन हिंदू हर हेत बोले जो राम बरहा बख्शन जपन कृष्ण नाम। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि मुसलमान लोग दूसरे का बच्चों बकरों का गाय का गल काटकर मुर्गी का गल काटकर खाते हो और फिर नमाज भी करते हो। कहते हैं मंसूर को देखो वो मुसलमान था, उसने परमात्मा पाने के लिए अपना शीश दे दिया, अपने हाथ कटा दिए, और तुम दूसरे का मांस खा करके उस पे कलमा पढ़ करके मुक्ति चाहते हो, ये तुम्हारी अनजान सोच है। एक मंसूर नाम का एक राजा का लड़का था। उस राजा की लड़की मंसूर की बहन नगर के साथ में बाहर बने हुए आश्रम में एक संत से उपदेश प्राप्त थी। उस लड़की को परमात्मा के विषय में बहुत ही अत्यधिक ज्ञान हो गया था और वो अपने गुरुदेव पर पूर्ण रूप से जो है ना आसक्त थी, आश्रित थी कि ये परमात्मा के सही मार्गदर्शक और परम संत हैं। लड़की शाम के समय आश्रम में जाती थी और वहां गुरुदेव की सेवा करके आती थी, खाना बना के आती थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मंसूर को किसी ने कह दिया कि आपकी बहन का चलन ठीक नहीं है। पहले समय में कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं रखा करते थे, नेक आत्माएं होती थी, संतों पर अविश्वास नहीं था, लेकिन एक दो व्यक्ति ने ऐसा कहा तो मंसूर के मन में कुछ खोट आया। एक दिन अपनी बहन के पीछे पीछे रात्रि शाम के समय थोड़ी सी दूरी पर रहा और जब वो आश्रम में प्रवेश कर चुकी तो बाहर एक दीवार में बने हुए सुराख से देखने लगा गतिविधि। लड़की ने गुरुदेव का खाना बनाया, खाना महापुरुष ने खाया, खाना खाकर के बाद फिर हाथ धोकर के बाद में दोनों ने पहले गुरुदेव ने ऐसा आरती की, अपना जो नमाज जो प्रभु की आरती की, उसके बाद ऐसे हाथ किया, आसमान से एक प्याला आया, आधा गुरुदेव ने पिया आधा कहा बेटी आप पी लो। अब लड़की की उस अमृत पान करने से दिव्य दृष्टि खुल गई। थोड़ा सा जब शेष बच गया तो उसने देखा कि उसका भाई बाहर सुराख से देख रहा है, उसके मन में मैल है। लड़की ने कहा गुरुदेव एक कुत्ता खड़ा है बाहर, आप कहो तो थोड़ी सी छींट उसको भी लगा दूं, सद्बुद्धि आ जाए। कर दे बेटा, जिसका उद्धार हो सके उतना ही थोड़ा। अब वो सोच रहा था कि तू देख नहीं रहा किसी को, वो ऐसे ही देख रहा था। लड़की ने थोड़ा सा साइड से जाकर के और उसके जिन्नू देख रहा था, उसके अंदर से वो ऐसे अमृत का वो प्याला शेष जो बचा हुआ था जूठा वो ऐसे मार दिया और वो मंसूर के मुंह पर लग गया, जीभ पे लग गया। जीभ पे लगते ही उसका सारा शरीर का जो अंतःकरण में मलिनता थी और साथ में गतिविधि देख रहा था कि वो तो सचमुच एक बेटी और पिता के तुल यहां पर रह रहे थे। इतना होते ही वो एकदम रोने लग गया बुरी तरह और रोता हुआ आश्रम में प्रवेश कर गया और कहा परमेश्वर क्या मुझ जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है। गुरुदेव ने कहा बेटा ये संसार ऐसा ही है, ये अच्छे को अच्छा नहीं रहने देता और परमात्मा पाने के लिए किसी की नहीं सुना करते। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को तो दासात्रन करिए। उसी दिन उपदेश ले लिया और समर्पण कर दिया कि परमेश्वर जैसे आप कहोगे दास ऐसे ही करेगा। अब उस मंसूर की लगन बहन से भी अधिक होगी। अब उसने क्या कहा, जैसे हम सतसाहिब को बोलते हैं तो उनका एक कोड वर्ड अनल हक था उस संत का। अनल हक का अर्थ होता है कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यानी परमात्मा मैं ही हूं, जीव ही ब्रह्म है, कुछ इस तरह की उसने उसको बताया। और मुसलमान धर्म में भगवान को आकार नहीं कहते, तो उन दूसरे जो काजी मुल्लाओं को पता लग गया कि एक राजा का लड़का और वहां जा रहा है, उस संत की महिमा बन जाएगी और तुम्हारी नंबर कटेंगे। इस दृष्टिकोण से उल्टी सुलटी कहकर राजा से कहा कि आपका लड़का तो परमात्मा को साकार बताता है और अपने आप को अल्लाह कहता है, और या तो उसको मना कर दो नहीं तो उसको सजा दी जाएगी। भाई सारा इकट्ठा कर लिया, मुल्ला का जी इकट्ठे हो गए, तो राजा भी मजबूर हो गया। उसने कहा बेटा तू अनल हक मत कहे, अनल हक मत कहे। अब ना उसके कहने थे, क्यों कर माने पिताजी के कहने से उसने तो गुरुदेव का आदेश और ये पूर्व संस्कार थे उसके, तो नहीं कहा कि अनल हक अनल हक अनल हक। वह ब्रह फूट गई उसकी। अब राजा से भी देखने भी एक दो बार के कहने से माफ भी किया पर वो नहीं माना। अंत में ये फैसला कर दिया कि ये काफिर है और इसको चौराहे पकड़ा करके और सारा नगर निवासी एक एक पत्थर मारे और फिर इसको यहां से भगा देंगे।